बच्चों नमस्ते, मैं मंजू देवी परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय इंदौर से हूँ। महाराजा परीक्षित ने एक बार एक बड़ा विशाल यज्ञ किया था। इस यज्ञ में सूत जी भी उपस्थित थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की सभा बुलाई और उस सभा में उन्होंने महाभारत की कथा सबको सुनाई। महाभारत कथा का संक्षिप्त रूप ही बाल महाभारत कथा है, जिसे चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य राजा जी ने लिखा तथा उसका हिंदी अनुवाद श्री सोम सुंदरम जी ने किया। तो बच्चों, आज हम बाल महाभारत कथा के 16वें पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का शीर्षक है धृतराष्ट्र की चिंता। महाराजा शांतनु के दो पुत्र थे, चित्रांगद व विचित्रवीर। महाराजा शांतनु के बाद चित्रांगद को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। चित्रांगद की अकाल मृत्यु के बाद विचित्रवीर राजा बने। उनके दो पुत्र थे, धृतराष्ट्र व पांडु। धृतराष्ट्र जन्मांध थे, इसलिए पांडु राजगद्दी पर बैठे। परंतु पांडु की भी मृत्यु हो गई, इसलिए धृतराष्ट्र को राजगद्दी मिली। सर्वप्रथम पाठ का सारांश, उसके बाद आप सब एक एक पैरा का आदर्श पाठ करेंगे, तदुपरांत कठिन शब्दार्थ व प्रश्नोत्तर। तो बच्चों, पाठ का सारांश ध्यानपूर्वक सुनिए। जब दोबारा चौसर के खेल का निमंत्रण युधिष्ठिर को स्वीकार करना पड़ा और शकुनी के साथ चौसर खेल खेलना पड़ा, तब यह शर्त थी कि हारे हुए दल को 12 वर्ष तक वनवास व 1 वर्ष अज्ञातवास में रहना पड़ेगा। अगर अज्ञातवास में उनका पता चल गया तो उन्हें फिर से 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। इस बार भी युधिष्ठिर युद्ध क्रीड़ा में हार गए और शर्त के अनुसार वन की ओर चल दिए। जब द्रौपदी के साथ पांडव वन की ओर जाने लगे तो धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा कि मैं देख नहीं सकता हूं, तुम ही बताओ कि पांडु के बेटे और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं। विदुर धृतराष्ट्र को बताने लगे कि युधिष्ठिर अपने चेहरा को ढक कर जा रहे हैं, भीम अपनी दोनों भुजाओं को देखते हुए, अर्जुन हाथ में बालू लेकर बिखेरते हुए, नकुल और सहदेव सारे शरीर में धूल लगाए हुए युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। द्रौपदी के बिखरे हुए बाल उनका मुख ढक दिया है और आंसू बहाती हुई जा रही है। यह सुनकर धृतराष्ट्र की चिंता और बढ़ गई। विदुर बार बार धृतराष्ट्र से आग्रह करते थे कि आप पांडवों के साथ संधि कर लीजिए। इस बार भी विदुर ने फिर वही बात छेड़ी तो धृतराष्ट्र झुंझलाकर बोले, मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है, अगर तुम चाहो तो पांडवों के साथ जा सकते हो। इतना कहकर वे अंतःपुर में चले गए। विदुर तुरंत रथ पर बैठे और पांडवों के पास चले गए। विदुर के चले जाने से धृतराष्ट्र और भी चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि विदुर को भगाकर मैंने बड़ी भूल की है। यह सोचकर धृतराष्ट्र संजय से बोले कि मैंने अपने प्रिय विदुर को भला बुरा कह दिया था, इससे वह वन में चला गया है। तुम जाओ और किसी भी तरह समझाकर उसे मेरे पास ले आओ। संजय जंगल में पांडवों के आश्रम में पहुंचे और विदुर से बोले कि धृतराष्ट्र अपनी गलती पर पछता रहे हैं, आप वापस चलें अन्यथा वे प्राण त्याग देंगे। यह सुनकर विदुर पांडवों से विदा लेकर हस्तिनापुर लौट आए। विदुर के आने पर धृतराष्ट्र ने उन्हें गले लगा लिया और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। इसी तरह एक बार महर्षि मैत्रेय धृतराष्ट्र के दरबार में आए। राजा ने उनका समुचित आदर सत्कार किया। फिर महर्षि से पूछा, आपने मेरे प्यारे वीर पांडवों को कुर जंगल में देखा होगा, वे लोग कैसे हैं? वे कुशल से तो हैं? महर्षि ने बताया कि राजन, काम्यक वन में हमें युधिष्ठिर से भेंट हुई थी। वन के दूसरे ऋषि मुनि भी उनसे मिलने आश्रम में आए थे। उन्होंने हस्तिनापुर में हुए घटना को मुझे बताया था। यही कारण है कि मैं आपसे मिलने चला आया। आपके और भीष्म के रहते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए था। वहीं पर दुर्योधन भी उपस्थित था। महर्षि ने उसे समझाया कि पांडवों से बैर मोल मत लो, उनसे संधि कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। किंतु दुष्ट प्रवृत्ति दुर्योधन उनकी ओर देखा तक भी नहीं, बल्कि बड़े ढिठाई से जमीन पर पैर पटकते हुए मुस्कुराता हुआ रहा। यह देखकर महर्षि बड़े क्रोधित हुए और बोले, तुम्हें अपने घमंड का फल जरूर मिलेगा। इसी बीच हस्तिनापुर में घटी घटनाओं की खबर श्री कृष्ण को लगी। वे तुरंत पांडवों के पास पहुंच गए। श्री कृष्ण के साथ कैकेयी, भोज और वृष्ट जाति के नेता चेतराज, धृष्टकेतु आदि भी गए। द्रौपदी जब श्री कृष्ण से मिली तो उसके आंखों से अविरल अस्त्रधारा बहने लगी। वह बोली, इस तरह अपमानित होने के बाद मेरा जीवन ही बेकार है। मेरा कोई नहीं रहा, आप भी मेरे नहीं रहे। करुण स्वर के से मैं विलाप करती हुई द्रौपदी को श्री कृष्ण ने समझाया और बोले, बहन द्रौपदी, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है उन सब की मौत युद्ध के मैदान में होगी। तुम शोक मत करो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि पांडवों की हर प्रकार से सहायता करूँगा। इसके बाद श्री कृष्ण पांडवों से विदा लेते हुए साथ ही अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उसके पुत्र अभिमन्यु को द्वारका ले गए। द्रौपदी के पुत्रों को लेकर धृष्टद्युम्न पांचाल देश चले गए। धन्यवाद।